प्रकार अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के अनेक साधन हैं, उसी प्रकार एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के भी हैं। उनकी चर्चा काव्यशास्त्र के ग्रंथों में आर्थी व्यंजना के प्रकरण में हुई है। वस्तुतः जिसे व्यंजना कहते हैं वह अर्थ विज्ञान की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन का ही एक रूप है। भिन्न शब्द या वाक्य से भिन्न अर्थ निकालना अर्थ विज्ञान का विषय है, चाहे उसे जो भी नाम दें। इसीलिए उन साधनों की चर्चा यहाँ भी उपयोगी होगी। साहित्य दर्पण में ऐसे 10 साधन गिनाए गए। पहला वक्ता, दूसरा बोधा यानी श्रोता, तीसरा वाक्य, चौथा वाच्य, पांचवा अन्य सन्निधि, छठा प्रकरण, सातवां देश, आठवां काल, नौवां काकु, दसवां चेष्टा इत्यादि। पहला वक्ता। वक्ता के भेद में एक ही उक्ति में अर्थ भेद हो जाता है। उदाहरणार्थ पूर्वोक्त घंटी हो गई वाक्य ले लें। यह वाक्य यदि विद्यार्थी बोलता है तो इसका अर्थ होगा कि परीक्षा आरंभ होने वाली। घंटी हो गई यदि यात्री बोलता है तो ट्रेन के आने या जाने की सूचना अभिमत रहती है। इसी प्रकार सूर्यास्त हो गया, पुजारी के मुख से उच्चरित होकर संध्या वंदन आरती आदि का भाव व्यक्त करता है। यदि इसे ही कोई राही कहे तो पड़ाव तक टिक रहना व्यक्त होगा। चोर के द्वारा प्रयुक्त होने पर इससे चोरी की तैयारी की व्यंजना होगी। और भी जितने व्यक्ति बोलते जाएंगे उनके अनुसार इस वाक्य अर्थ में परिवर्तन होता जाएगा। वक्ता के भेद से एक ही वाक्य विभिन्न अर्थ देता है, यह इन उदाहरणों से स्पष्ट है। दूसरा बोधा। वक्ता के समान ही अर्थ प्रतीति में बोधा या श्रोता का भी महत्व है। कोई बात किससे कही जा रही है इससे अर्थ प्रतीति में वैशिष्ट आ जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही तेम बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी का यह दोहा महाराज जयसिंह को लक्ष्य करके लिखा गया था और इसका जो अर्थ उन्होंने समझा वह उन्हें के लिए संभव था, क्योंकि नौढ़ा रानी के संदर्भ में ही इस उक्ति की सार्थकता थी। छत्रपति शिवाजी या स्वामी विवेकानंद के पास यदि यह दोहा लिखकर भेजा जाता तो निरर्थक होता। तीसरा वाक्य। अर्थ की पूर्ण स्पष्टता के लिए वाक्य आवश्यक है। यह पहले अनेक बार प्रतिपादित किया जा चुका है। पृथक और स्वतंत्र रहने पर शब्द का जो अर्थ होता है वही वाक्य में नहीं रह जाता। वाक्य में वह बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ मैंने आपसे कहा था न, इस वाक्य में न का अर्थ निषेध न होकर विधि हो गया है। अलग रहने पर न हमेशा निषेध का वाचक है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह सर्वथा विपरीत अर्थ का भी वाचक हो जाता है। यह इस वाक्य से स्पष्ट है। देखता हूं कि तुम कैसे जाते हो, इस प्रश्न वाक्य का भी अर्थ निषेध ही है जो पूरे वाक्य से व्यक्त होता है। चौथा वाच्य। वाच्य का अर्थ है वक्तव्य। क्या कहा जा रहा है इससे भी अर्थ की प्रतीति में अंतर आता है। जैसे खुदा बचाए राह की ठंडी हवाओं से, किसोता रह गया मैं काफिला मंजिल पे जा पहुंचा। यहां इस वक्तव्य से ही यह प्रतीति होती है कि आराम और विश्राम करने वाला जहां का तहां रह जाता है, निरंतर श्रम तथा प्रयास करने वाला लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह अर्थ उपर्युक्त पंक्तियों से वाच्य अर्थात वक्तव्य के वैशिष्ट के कारण ही प्राप्त होता है। कहने वाले का लक्ष्य इसी अर्थ की प्रतीति कराना है। पांचवा अन्य सन्निधि। कभी कभी वक्ता और बोधा यानी श्रोता के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में से अर्थ में अंतर पड़ जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एकांत में शकुंतला से बातें कर रहा है। तब तक गौतमी के आने की आहट मिलती है, जहाँ शकुंतला वहां से घबरा कर चल देती है और जाते समय लता मंडप को संबोधन करके कहती है, इनवर्टेड कामा, हे संतापहारक लता मंडप, परिभोग के लिए मैं तुम्हें फिर आमंत्रित करती हूँ, इनवर्टेड कामा बंद। इस वाक्य का अर्थ दुष्यंत के लिए दूसरा और गौतमी के लिए दूसरा है। दुष्यंत समझता है कि शकुंतला लता मंडप के बहाने उसको आमंत्रित कर रहे हैं और गौतमी समझती हैं कि वह लता मंडल को संबोधन करके अपना उद्गार व्यक्त कर रही है। इस प्रकार एक ही वाक्य के दो अर्थ हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ बातें करते होते हैं, तब तक कोई तीसरा आदमी आ जाता है। उसके आने पर बात का सिलसिला न बदलकर वाक्यों का विन्यास हम इस ढंग से करने लगते हैं कि बुद्धा वास्तविक अभिप्राय समझता जाता है और नवागंतुक उसका सामान्य अर्थ। प्रकरण देश और काल का स्पष्टीकरण निखारतक शब्दों के अर्थ निर्णय के प्रसंग में हो चुका है। छठा अर्थ निर्णय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन प्रकरण ही है, चाहे शब्द एकार्थक हो या अनेकार्थक। प्रकरण का महत्व सबसे पहले यास्क ने प्रतिपादित किया। यद्यपि उन्होंने प्रकरण पर बल वेद मंत्रों के अर्थ के संदर्भ में दिया है, पर इसका उपयोग लौकिक भाषा में भी कम नहीं है। यास्क का मानना है कि मंत्रों का अर्थ पृथक पृथक नहीं प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए। ऑगडेन और रिचर्ड्स ने 1927 में जब अर्थ प्रतीति के लिए प्रकरण को आवश्यक बताया तो यूरोप में हलचल सी मच गई और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में इसका अभिनंदन किया गया। भारत में विगत 2800 वर्षों से अर्थ प्रतीति के लिए प्रकरण आवश्यक माना जाता रहा है। वस्तुतः बिना प्रकरण के अर्थ निर्णय संभव ही नहीं है। प्रत्येक वाक का सुनिश्चित अर्थ प्रकरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। उपर्युक्त घंटी हो गई वाक्य को ही ले ले। वही व्यक्ति यदि स्टेशन पर यह वाक्य बोलता है तो इसका अर्थ बदल जाता है और गाड़ी का आना या छूटना द्योतित होने लगता है। वक्ता एक होने पर भी यह अर्थ वेद प्रकरण के आधार पर ही होता है। प्रकरण के भेद से ईश्वर्यास हो गया, इस वाक्य अनंत अर्थ हो जाते। सातवां आठवां देश और काल। घंटी हो गई, यह वाक्य कब और कहाँ बोला जा रहा है इस आधार पर भिन्न अर्थों की प्रतीति कराएगा। इसका अर्थ परीक्षा भवन में जो होता है वही स्टेशन पर नहीं, और जो स्टेशन पर होता है वही वर्ग में नहीं। इसी प्रकार परीक्षा या वर्ग आरंभ होने के समय जो अर्थ होता है वह उनके समाप्त होने के समय नहीं होता। नवा काकू। काकू का अर्थ है ध्वनि विकार, अर्थात बोलते समय स्वर के आरोह अवरोह से काम लेना। एक ही वाक्य काकू के द्वारा सर्वथा भिन्न अर्थों का बोध हो जाता है। एक छोटा सा वाक्य लीजिए, मैंने तुमसे कहा था, यह एक सामान्य कथन हुआ जिसका अर्थ है कि मैंने तुमसे कोई बात कही थी, किंतु इसके तीन पदों में पृथक पृथक काको का प्रयोग करने से इसके सर्वथा भिन्न अर्थ हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था मैंने एक काको का प्रयोग कर बोले तो अर्थ होगा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था, दूसरे ने कहा होगा। तुमसे पर काको का प्रयोग करें तो अर्थ होगा मैंने कहा था पर तुमसे नहीं कहा था, और यदि कहा था पर काको का प्रयोग करें तो अर्थ होगा कि मैंने नहीं कहा था। दसवां चेष्टा। सदा बोलकर ही अपना अभिप्राय दूसरे पर अभिव्यक्त नहीं किया जाता, बहुत बार चेष्टा या इशारे से भी अभिप्राय व्यक्त किया जाता है। कभी कभी वाणी और चेष्टा दोनों का एक साथ प्रयोग भी होता है। आंगिक भाषा की चर्चा के प्रसंग में इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि अर्थ निर्णय में चेष्टा से ही पर्याप्त सहायता मिलती है। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में गोपी और कृष्ण ने चेष्टा से ही अपना अनुराग व्यक्त कर लिया है। लखी गुरुजन बीच कमल सो शीश छुआवै श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। यहाँ केवल चेष्टा से ही अर्थ प्रतीतित हुई है। जैसे पहले कहा गया है, अनेकत्र भाषा संबंधी अभिव्यंजना को समर्थ करने के लिए भी चेष्टा की सहायता ली जाती है। अनेकार्थक और एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के इन साधनों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ की सम्यक और निभ्रांत प्रतीति कितनी जटिल प्रक्रिया है। प्रतीति का संबंध वस्तुतः किसी एक तत्व से न होकर अनेक तत्वों से है, और उन सब पर विचार करने के बाद ही किसी सुसंगत अर्थ पर पहुंचा जा सकता है। इसीलिए संस्कृत में एक सिद्धांत है, सर्वे सार्थक वाचका, अर्थात यदि शब्द सभी अर्थों के वाचक हो सकते हैं, कहने का अभिप्राय है कि अर्थ केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः अर्थ की व्यापकता को देखकर सर्वे सर्वार्थवाचका वाली उक्ति सार्थक प्रतीत होती है। अर्थ परिवर्तन। भाषा के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष अनायास सामने आ जाता है कि अर्थ में सदा परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि या पद के परिवर्तन की प्रक्रिया पर पहले विचार किया गया है। अर्थ भी स्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। ध्वनि और पद के समान उसमें भी परिवर्तन हुआ करता है। अर्थ परिवर्तन को अर्थ विकास भी कहा जाता है। भाषा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होता है वह किसी न किसी रूप में विकास ही है। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की तीन प्रमुख दिशाएं हैं, पहला विस्तार, दूसरा संकोच और तीसरा आदेश। अर्थ विकास इन तीनों में से किसी भी दिशा में क्यों न हो, उसके पीछे लक्षणावृत्ति काम करती रहती है। शब्द के मुख्य अर्थ में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो वह लक्षणा के कारण है। जब तक लक्षणा का आधार नहीं मिलता तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। पहला, अर्थ विस्तार। कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता रहता है और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, इसे ही अर्थ विस्तार कहते हैं। प्रवीण शब्द का अर्थ आरंभ में था अच्छी तरह वीणा बजाने वाला, प्रकृष्टो वीणायाम, किंतु बाद में चलकर वह किसी भी काम में निपुणता का वाचक हो गया। जैसे वह झाड़ू देने में प्रवीण है या भोजन बनाने में प्रवीण है। झाड़ू देने वाला या भोजन बनाने वाले ने भले ही कभी वीणा न छुई हो फिर भी प्रवीण कहलाने लगा। इसी प्रकार कुशल शब्द का अर्थ था कुश लाने वाला। कुश उखाड़ने में विवेचकता से काम लेना पड़ता है। एक तो दूसरे तृणों से उसकी पहचान करना और दूसरे उखाड़ते समय सावधानी बरतना, नहीं तो उसके कटीले अग्रभाग से उंगलियों के छिद जाने का भय रहता है। अर्थात कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग कुश के अग्रभाग के नुकेलेपन को ही आधार बनाकर होता है। तो आरंभ में कुशल शब्द केवल कुश संबंधी विवेचकता का वाचक था, किंतु बाद में चतुर का पर्याय बन गया और कुश का अर्थ उसमें से बिल्कुल तिरोहित हो गया। यह स्थिति तैल शब्द की भी हुई। तिल से प्राप्त स्नेह को ही तैल कहते थे, किंतु आज तैल शब्द का प्रयोग सरसों, तीसी, नारियल, यहाँ तक कि मिट्टी के तेल के लिए भी होता है। आरंभ में पंडित शब्द का प्रयोग कुल अधीत और ज्ञानी के लिए होता था, किंतु आज ब्राह्मण मात्र के लिए होता है, भले ही उन्हें रक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो। महाराज पहले शासक ही होते थे, पर आज खाना पकाने वाले निर्धन ब्राह्मण देवता भी महाराज कहलाने लगे। अर्थ विस्तार मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होता है, सादृश्य, साहचर्य, सामिप्य, तात्कर्म्य, शब्द के एक अंश की अभिवक्षा, मुख्य अर्थ संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति आदि। दूसरा, अर्थ संकोच। जिस प्रकार अर्थ का विस्तार संभव है उसी प्रकार संकोच भी। ऐसा देखा जाता है कि कोई शब्द पहले विस्तृत अर्थ का वाचक था लेकिन बाद में सीमित अर्थ का वाचक हो गया, या व्युत्पत्ति के आधार पर उसे विस्तृत अर्थ का वाचक होना चाहिए किंतु प्रयोग उसका सीमित अर्थ में होता है। उदाहरणार्थ गम धातु से गो शब्द निष्पन्न हुआ जिसका आरंभिक अर्थ था चलने वाला, परंतु आज प्रत्येक चलने वाले जंतु को गो नहीं कहते, यह शब्द पशु विशेष के लिए ऋण हो गया है। इसी तरह जगत शब्द का अर्थ खूब चलने वाला है, पर मोटर, रेल या हवाई जहाज को जगत नहीं कहते, यह संसार का वाचक हो गया है। इसी तत्व को ध्यान में रखकर कविराज विश्वनाथ ने कहा है, अन्यद्धि शब्दान व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। शब्दों का अर्थ सदा व्युत्पत्ति के आधार पर ही नहीं होता, वह मुख्यतः प्रवृत्ति के आधार पर होता है, अर्थात उसका नियामक लोक व्यवहार है। उदाहरणार्थ जल या पंक से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जलज या पंकज नहीं कहते। यदि वैसा करें तो सेवार, मछली, मेढक आदि के लिए भी इन शब्दों यानी जलज और पंकज का प्रयोग करना होगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से बाधक से व्यापक अर्थ के वाचक होकर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से ये कमल के ही वाचक हैं। इसी तरह सभ्य शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सभा में बैठने के योग्य, किंतु सभा में हर बैठने वाला सभ्य नहीं माना जाता। सुर्खी शब्द का अर्थ है लाली, मगर हर लाल चीज सुर्खी नहीं कहलाती। ईंट के लाल चूर्ण को ही सुर्खी कहते हैं। ऐसे ही सब्जी शब्द का प्रयोग हरी वस्तुओं के लिए न होकर केवल तरकारी के लिए होता। तट पर खड़े रहने वाले को तटस्थ नहीं कहते, तटस्थ शब्द का वाच्य मध्यस्थ हो गया है। यही स्थिति अनुकूल की भी है, जिसका संबंध अब कूल से नहीं रह गया है। मंदिर शब्द पहले भवन मात्र का वाचक था, पर आज केवल देव निवास के अर्थ में सीमित हो गया है। अर्थ संकोच निम्नलिखित कारणों से होता है। क, समास। नीलांबर, पीतांबर आदि शब्द बहुव्रीहि समास के कारण संकुचित अर्थ के वाचक हो गए। जिस किसी नीला या पीला वस्त्र धारण करने वाले का बोध इन शब्दों से नहीं होता, यह बलराम और कृष्ण के अर्थ में ही सीमित है। इसी तरह संस्कृत में पश्यतु हरह का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है सामने से उठा लेने वाला, किंतु वह सोनार का वाचक है। यदि सामने से कोई बाल्टी उठा ले तो उसे पश्यतु हरह नहीं कहेंगे। ख उपसर्ग। उपसर्ग पर पहले भी विचार किया जा चुका है, जो शब्दों के अर्थ को संकुचित या सीमित कर देता है। एक ही हार शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थों का वाचक हो जाता है, जैसे प्रहार, संहार, विहार, उपहार आदि। इसी प्रकार संचार, विचार, उपचार आदि। प्रहार से संहार का या प्रचार से संचार का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि इन उपसर्गों के द्वारा हार और चार का अर्थ संकुचित हो गया है। ग विशेषण। अर्थ संकोच का एक बहुत बड़ा साधन विशेषण है। गुलाब शब्द से किसी भी रंग के गुलाब का बोध हो सकता है, किंतु लाल गुलाब कह देने पर उजले, पीले, गुलाबी, हरे आदि रंग के गुलाब का व्यवच्छेद हो जाता है। यहाँ लाल विशेषण के कारण गुलाब का अर्थ संकुचित हो गया। इसी तरह पीला फूल कहने से पीले को छोड़कर और किसी फूल का बोध नहीं होगा, यहाँ भी पीला विशेषण ने फूल का अर्थ संकुचित कर दिया। घ पारिभाषिकता। शब्दों का पारिभाषिक रूप में प्रयोग हमेशा उनके अर्थ को संकुचित कर देता है। उदाहरणार्थ रस शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु काव्य शास्त्र में उसका प्रयोग विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न आनंदानुभूति के लिए ही होता है। आयुर्वेद में रस शब्द धातुओं से प्रस्तुत औषधियों के लिए या मधुरादि षडरसों के लिए प्रयुक्त होता है। व्याकरण में वृद्धि शब्द का अर्थ वही नहीं होता जो लोक में है। इसी तरह गुण शब्द व्याकरण, काव्यशास्त्र और दर्शन में सर्वथा भिन्न अर्थों का वाचक है। वासना शब्द का प्रयोग लोक में दूसरे अर्थ में होता है, किंतु योग दर्शन में संस्कार के अर्थ में। राजनीति की संधि व्याकरण की संधि से भिन्न है, और चारों जो संधि भेद करता है यानी सेंध फोड़ता है वह व्याकरण और राजनीति दोनों से भिन्न है। चोर जो संधि भेद करता है यानी सेंध फोड़ता है वह व्याकरण और राजनीति दोनों से भिन्न है। अंग नामकरण। नामकरण के कारण भी बहुत सारे अर्थ शब्दों के अर्थ में संकोच आ जाता है, जैसे नदी विशेष का नाम सोण यानी सोन है, जो उसके जल की लाली के आधार पर पड़ा होगा। अब आज यदि सोण के बदले रक्त या लोहित कहें तो उसका बोध नहीं होगा। इसी तरह रक्त का अर्थ सामान्यतः लाल है, किंतु वह रुधिर के अर्थ में रूढ़ होकर संकुचित अर्थ का बोधक हो गया है। घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ नहीं कहलाता, उसका विशेष अर्थ होता है। इसे ही वन का प्रत्येक निवासी वानप्रस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। च प्रत्यय। प्रत्यय के योग से अर्थ संकोच के उदाहरण है भक्ति, भाग, भजन, जो एक ही धातु से निष्पन्न होने पर भी विभिन्न अवयवों प्रत्ययों के कारण विभिन्न अर्थों के वाचक बन गए हैं। ऐसे ही मन धातु से मति, मत, मनन, मान आदि अनेक शब्द बने हैं, किंतु सबके अर्थ विभिन्न हैं। तीसरा अर्थादेश। आदेश का अर्थ है परिवर्तन। अर्थादेश में अर्थ का विस्तार या संकोच नहीं होता, वह बिल्कुल बदल जाता है। अर्थात पहले किसी दूसरी वस्तु का वाचक रहता है और बाद में किसी दूसरी वस्तु का वाचक बन जाता है। जैसे वेद में असुर शब्द देवता का वाचक था, किंतु बाद में दैत्य का वाचक बन गया। आकाशवाणी का अर्थ पहले देववाणी था, अब उसका प्रयोग अखिल भारतीय रेडियो के लिए हो रहा है। रंज का अर्थ अफसोस है, किंतु पूर्वी हिंदी क्षेत्र में वह क्रोध के लिए प्रयुक्त होता है। साहस से पहले डकैती आदि बुरे कामों का बोध होता था, पर आज वह अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। खाद्य से विकसित खाद शब्द मनुष्य के भोजन के लिए व्यवहारित नहीं है होता, उसका अर्थ हो गया है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाला द्रव्य। भद्र शब्द से विकसित भद्दा शब्द से अनेक पूर्वज का कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ भद्र और कहाँ भद्दा। अर्थ परिवर्तन के उदाहरणों पर विचार करने से दो बातें सामने आती हैं। कुछ शब्दों का अर्थ पहले बुरा रहता है और बाद में अच्छा हो जाता है, और कुछ का अर्थ पहले अच्छा रहता है और बाद में बुरा हो जाता है। इन्हें क्रमशः अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष कहते हैं। अर्थोत्कर्ष के उदाहरण हैं साहसी, मुग्ध। मुग्ध का अर्थ पहले मूढ़ था, किंतु अब प्राचीन अर्थ से बिल्कुल अलग अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। बोपदेव ने अपने संस्कृत व्याकरण का नाम मुग्धबोध रखा, अर्थात जिस व्याकरण से मुग्ध मूढ़ को भी बोध हो जाए। पर जब कोई कहता है कि उसकी बात सुनकर मैं मुग्ध हो गया, तो निश्चय ही मुग्ध शब्द का वह अर्थ उसे अभिव्यक्त नहीं होता जो मुग्धबोध के लेखक को था। अर्थापकर्ष के उदाहरण हैं भद्दा, महाराज, पंडित, ठाकुर आदि। इसके अर्थ पहले से अपकृष्ट हो गए। अर्थ परिवर्तन में उत्कर्ष की अपेक्षा अपकर्ष की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अर्थ परिवर्तन के कारण हमने पहले देखा है कि अर्थ का संबंध किसी न किसी रूप से मानव मन से है। स्वभावतः अर्थ परिवर्तन के कारण भी मानव मन से ही संबंध है। अर्थ तत्व एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसा कहा गया है, अर्थ संबंधी प्रत्येक परिवर्तन लक्षणा और व्यंजना के अंतर्गत आ जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन संबंधी सारी क्रियाओं को लक्षणा और व्यंजना का नाम दिया गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने में टकर और मिशेल ब्रेऑल ने सर्वप्रथम अर्थ तत्व पर विचार किया और आधुनिक युग में ऑगडेन और रिचर्ड्स की देन महत्वपूर्ण मानी जाती है। टकर के आधार पर तारापुरवाला ने अर्थ परिवर्तन के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला, लाक्षणिक प्रयोग। दूसरा, परिवेश का परिवर्तन। उसमें भी तीन खंड, क भौगोलिक, ख सामाजिक, ग भौतिक। तीसरा, विनम्रता प्रदर्शन। चौथा, सुश्राव्यता। पांचवा, व्यंग। छठा, भावात्मक बल। सातवां, सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। आठवां, अज्ञान अथवा भ्रांति। नौवां, शब्द की अंतर्निहित अनिश्चितता। दसवां, व्यक्ति के अनुसार शब्द के प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट में भेद। ग्यारहवां, शब्दार्थ के एक तत्व की प्रमुखता। बारहवां, गौण अर्थ की प्रमुखता। ये सभी कारण विभिन्न नामों से लक्षणा के विस्तार हैं। लक्षणा के भेद से परिचित व्यक्ति के लिए इनमें कोई नवीनता नहीं है, बल्कि उसके भेदोपभेद में अर्थ संबंधी परिवर्तन के अनेक अन्य कारण अधिक वैज्ञानिक रूप में परिवर्तन है जो इन 12 कारणों में गतार्थ नहीं होते। इन्हें प्रत्येक का सविस्तार परिचय नीचे दिया जाता है। पहला, लाक्षणिक प्रयोग। भाषा का प्रमुख उपयोग भाव या विचार का संप्रेषण है, किंतु मनुष्य की सहज सौंदर्य प्रियता जिससे कलाओं का उद्भव हुआ है भाषा में भी दिखाई देती है। बोलते समय प्रत्येक वक्ता की इच्छा रहती है कि उसकी अभिव्यंजना सुंदर, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हो। इस प्रकार मनुष्य अपने शरीर या जीवन के अन्य उपकरणों को सुंदर रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, उसी प्रकार भाषा को भी। दूसरी चीज यह है कि भाषा अभिव्यंजना का बहुत अशक्त और असमर्थ माध्यम है। समस्त अनुभूतियों को शब्द में बांध देना असंभव है। अनुभूति और अभिव्यंजना के नैसर्गिक असमानाधिकरण को दूर करने के लिए, या यूं कहें कि भाषा की अभिव्यंजनात्मक त्रुटि को पूर्ण करने के लिए अनेक साधन काम में लाए जाते हैं। लाक्षणिक प्रयोग भी उनमें से एक है। एक बात और है, भौतिक वस्तुओं के समान अधिक प्रयोग से शब्द भी घिस जाते हैं और उनकी अभिव्यंजकता शिथिल पड़ जाती है। अतः उनमें शक्ति भरने के लिए अभिव्यंजना की नवीन भंगिमाएं अपनानी पड़ती हैं जो नवीन शब्द प्रयोग से ही संभव हो पाती हैं। लाक्षणिक और औपचारिक प्रयोगों के, जिन्हें कभी कभी अलंकारिक भी कहा जाता है, अनंत उदाहरण भाषा में मिलते हैं। मनुष्य के सादृश्य के आधार पर अनेक निर्जीव वस्तुओं के लिए भी अंगवाची शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आलू या नारियल की आँख, सारंगी के कान, आरे के दांत, घड़े का मुंह, सुराही की गर्दन, बर्तन का या नाव का पेट, पेड़ का धड़, अखबार की पीठ, छंद के चरण या पाद। इसी तरह मधुर संगीत, मीठी बात, कटु अनुभव, सरस कहानी, नीरस काव्य, निर्जीव भाषा, सजीव अभिव्यंजना, इन सभी प्रयोगों में लाक्षणिकता है जिसका आधार सादृश्य या उपचार है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि बहुत बार यह भी अनुभव नहीं होता कि हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका सामान्यतः प्रयोग होना नहीं चाहिए। उदाहरणार्थ, मधुर आस्वाद्य वस्तु हुआ करती है। संगीत की मधुरता का कोई अर्थ नहीं क्योंकि वह खाने की वस्तु नहीं है। इसी तरह बात में मिठास और कटुता भी आरोपित ही है। सजीव या निर्जीव प्राणी हुआ करते हैं, किंतु इन विशेषणों का प्रयोग हम भाषा या अभिव्यंजना के लिए करते हैं जिनमें जीवन नाम की वस्तु ही नहीं होती। कहानी से कोई तरल द्रव्य नहीं टपकता कि उसे हम सरस कहते हैं, और न काव्य में तरल द्रव्य होना चाहिए जिसके न रहने पर हमें नीरस कह देते हैं। किसी के कोमल हृदय को देखकर हम कह देते हैं कि उसका दिल मोम का है, या कठोर होने पर उसका दिल पत्थर का है। बहादुर मनुष्य को शेर, भीरु को गीदड़, खुशामदी को कुत्ता, मूर्ख या गंदे को सुअर, बुद्धिहीन को बैल, प्रच्छन्न रूप में अपकार करने वालों को सांप, स्थूल काय को हाथी, विद्वान को बृहस्पति, सुंदर को चंद्रमा कहना अपने कथन को अधिक रमणीय, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने की भावना का ही परिणाम है। मैं कालिदास का अध्ययन कर रहा हूँ, वह प्रसाद पर शोध कर रहा है। शेक्सपियर के जानकार इस देश में बहुत कम हैं। आदि वाक्य जिनमें व्यक्तियों से उनकी रचनाओं का बोध कराया जाता है लाक्षणिक प्रयोग के ही उदाहरण हैं। दूसरा, परिवेश का परिवर्तन। क, भौगोलिक परिवर्तन, परिवेश का परिवर्तन। वेद में उष्ट शब्द का प्रयोग भैंसे के अर्थ में हुआ है, किंतु बाद में उसका प्रयोग ऊंट के लिए होने लगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ में आर्य जहाँ रहते थे वहाँ ऊंट नहीं थे। बाद में जब शीत भूभाग से उष्ण भूभाग की ओर आर्य आए और उन्हें एक नया उपयोगी जंतु मिला, तो उसके लिए वे उस पूर्व परिचित शब्द का ही प्रयोग करने लगे जिसे भैंसे के लिए करते थे। तात्पर्य कि ऊंट के अर्थ में भैंसावाची उष्ट शब्द का प्रयोग भौगोलिक कारणों से होने लगा। कॉर्न शब्द का अर्थ अंग्रेजी के लिए गेहूँ, स्कॉच के लिए बाजरा और अमेरिकी के लिए मक्का है। शब्द एक ही है पर भौगोलिक स्थान भेद से उसके तीन अर्थ प्रचलित हो गए हैं। एक दिलचस्प कहानी है कि विगत युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर एक सरकारी अभिकरण ने यूरोप के अकाल का सामना करने के लिए अमेरिका से कॉर्न मंगाया। जहाजों के पहुंचने पर पाया गया कि गेहूं के बदले उनमें मक्का भरा है। बात साफ थी, ब्रिटिश अभिकरण ने कॉर्न शब्द का प्रयोग गेहूं के लिए किया था और अमेरिकी अभिकरण ने उसका अर्थ वहां के प्रयोग के आधार पर मक्का लगा लिया। भाषा संबंधी छोटी सी भूल से खरीद बिक्री में कई लाख डॉलर की गड़बड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में चावल शब्द का प्रयोग चावल और भात दोनों के लिए होता है, किंतु पूर्वी प्रदेश में खाते समय कोई चावल मांगे तो लोग उसका अभिप्राय ही नहीं समझ सकेंगे। बिहार और बंगाल में चावल और भात का भेद रखा जाता है। सिद्ध चावल को भात नहीं कहेंगे, चावल कभी नहीं। पश्चिम में डेरा शब्द का प्रयोग थोड़े समय के लिए रहने का जो स्थान हो उसके लिए होता है, और पूरब में घर के लिए। ठाकुर शब्द उत्तर प्रदेश में छत्री का वाचक है, बिहार में नाई का और बंगाल में रसोइये का। पश्चिम में भागना क्रिया का प्रयोग सामान्यतः दौड़ने के लिए होता है, जैसे जरा भाग कर बाजार से पान तो लेता आ, किंतु पूर्व में भागना का प्रयोग हमेशा ही डर कर या हार कर जान बचाने की भावना से दौड़ने के लिए होता है। वह भागा का अर्थ यह होगा कि वह भय आतंक से जान बचाने के लिए दौड़ा। ख, सामाजिक परिवेश का परिवर्तन। समाज भेद से एक ही शब्द के अर्थ में भेद आ रहा जाता है और एक ही वस्तु के लिए भिन्न शब्द का प्रयोग होने लगता है। जैसे अंग्रेजी में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर आदि शब्दों का जो अर्थ परिवार में है वही रोमन कैथोलिक धार्मिक संगठन में नहीं। सिस्टर का अर्थ परिवार में बहन होता है, किंतु अस्पताल में उपचारिका, नर्स। भाई शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, सहोदर, भ्राता, साला, बहनोई, साथी, अजनबी, पुत्र, पत्नी, नौकर, दुकानदार आदि। भाई कहने से बड़े भाई का बोध होता है, किंतु साला बड़े बहनोई को भाई साहब कहता है और बहनोई भी बड़े साले को भाई साहब। देखो भाई, तुम पढ़ नहीं रहे हो, इस वाक्य का प्रयोग बहुत बार पिता पुत्र के लिए करता है। क्यों भाई, एक प्याली चाय नहीं दोगी? इस वाक्य में कोई भाई शब्द का वाच्य पत्नी है, बहन जी शब्द बहन का ही वाचक न होकर किसी महिला का वाचक हो गया है। वृद्ध महिला को माँ और वृद्ध पुरुष को बाबूजी कहना सामाजिक शिष्टाचार का अंग है। ऐसे ही माँ शब्द का प्रयोग माता के अतिरिक्त सास के लिए और बाबूजी का प्रयोग पिता के अतिरिक्त ससुर के लिए भी होता है। एक ही वस्तु के लिए समाज भेद से भिन्न शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता है। जैसे संस्कृत का पंडित किताब न कहकर ग्रंथ या पुस्तक कहता है, वही मौलवी के मुँह से ग्रंथ भूल कर भी नहीं निकलेगा। आदरणीय शिक्षित व्यक्ति नाश्ता कहता है, किंतु पुराने ढंग के लोग नाश्ते के बदले जलपान शब्द का प्रयोग करते हैं। एक पंडित जी नाश्ता शब्द सुनकर बड़े चिढ़ जाते थे। हिंदू ईश्वर या भगवान शब्द का प्रयोग करेगा तो मुसलमान खुदा या अल्लाह का, यद्यपि अर्थ की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं। ग, भौतिक परिवेश का परिवर्तन। जैसे जैसे भौतिक साधनों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे वस्तुओं के नाम भी परिवर्तित होते जाते हैं। पानी पीने का कोई बर्तन हमारे यहाँ रहा होगा, किंतु आज उसका नाम कोई नहीं जानता। सभी कोई गिलास में पानी पीते हैं। गिलास शब्द अंग्रेजी की देन है, साथ ही इस शब्द का अर्थ विस्तार भी हो गया है। गिलास केवल कांच के बने जलपात्र को ही नहीं कहते, कांसा, चांदी, पीतल, शीशा, स्टेनलेस, प्लास्टिक, किसी भी द्रव्य का गिलास हो सकता है। ऐसे ही दर्पण के लिए आशीषा शब्द का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि आशीषे यानी कांच का ही दर्पण बनता है, पहले धातु का बना करता था। शीशा शब्द व्यर्थ विस्तार का ही उदाहरण है। शीशा धातु विशेष का नाम है, किंतु अब उसका प्रयोग कांच के लिए होने लगा है। तीसरा, विनम्रता प्रदर्शन। विनम्रता सामाजिक शिष्टाचार का अभिन्न अंग है। भाषा से किसी व्यक्ति की शिक्षा, संस्कृति, अभिजात आदि का पता लग जाता है। फारसी तहजीब की चार बातें पर ध्यान दिया जाता था, रफ्तार यानी चलना, गुफ्तार यानी बोलना, निशस्त यानी बैठना, बर्खास्त उठना, और अभिजात वर्ग में इन चारों को सम्यक शिक्षा दी जाती थी। वस्तुतः अभिजात्य के सूचक जो कई तत्व हैं, उनमें भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, और किसी भी भाषा सुनकर यह जान लिया जा सकता है कि वह किस तबके का व्यक्ति है। सामाजिक दृष्टि से विनम्रता दिखाना विशिष्टाचार का ही एक अंग है, और वह चेष्टा के अतिरिक्त भाषा से ही व्यक्त होती है। भगवान से लेकर मनुष्य तक के साथ इस शिष्टाचार का पालन होता है। भगवान को जब कोई करुणा निधान, दया सागर, भक्त वत्सल, शरणागत रक्षक आदि संबोधनों से पुकारता है, तो उसमें जहाँ भगवान की शक्तिमत्ता दिखाना अभिष्ट रहता है, वहाँ अपनी विनम्रता दिखाना भी। विनम्रता के कारण भी ही भक्त कवियों ने अनेकत्र अपनी हीनता के अनेक प्रकार से व्यंजना की है, जैसे मुँह सम कौन कुटिल खलकामी जैसी उक्तियाँ, जिन्हें भक्त की पारिभाषिक शब्दावली में कार्पण्य कहते हैं। विनम्रता प्रदर्शन के ही विभिन्न रूप हैं। राजा के लिए अन्नदाता, पृथ्वीनाथ, धर्मावतार, आलम्पना, जहाँपना आदि संबोधन इसी भावना से प्रेरित थे। संभव है वह राजा दो चार कोष का ही स्वामी हो, फिर भी पृथ्वीनाथ कहा जाता था। धर्म पनांगमुख को ही धर्मावतार करना शिष्टाचार का अंग था। भले ही राजा परम कंजूस है, किंतु उसे अन्नदाता कहना ही है। उसने एक व्यक्ति को भी शरण न दी हो तो क्या हुआ, वह आलम्पना और जहाँपना है। ये सब सामाजिक शिष्टाचार के भाषिक रूप हैं। इसी प्रकार अपने को सेवक, अनुचर, अकिंचन, खाकसार, नासीज आदि का नाम विनम्रता का ही रूप है। मेरे यहाँ आइए न कहकर मेरी कुटिया में पधारिए, मेरी कुटी पवित्र कीजिए, मेरे यहाँ भोजन कीजिए के बदले मेरे यहाँ जूठन गिराइए आदि वाक्य विनम्रता की भावना से ही प्रेरित होते हैं। इसी तरह उर्दू में अपने मकान को गरीब खाना और दूसरे के मकान को दौलत खाना कहने का तरीका है। किसी के अप्रत्यक्षित रूप से आ जाने पर हम पूछते हैं, कैसे कृपा की, कैसे स्मरण किया। यदि उपालंब देना रहा तो हम कह सकते हैं, किधर से रास्ता भूल पड़े। किसी बड़े से कुछ कहते समय हम कहते हैं, आज्ञा दीजिए, फरमाइए, और अपनी ओर से जब बड़े के सामने वह कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग, जैसे गुरुदेव आ रहे हैं, और अपने के लिए एकवचन का प्रयोग विनम्रता की भावना से ही किया जाता है। चौथा सुश्रव्यता, अंग्रेजी में यूजेफिज्म या यूफेमिस्टिक लैंग्वेज शब्द का बहुत प्रयोग होता है। यूफेमिज्म ग्रीक के दो शब्दों से बना है, यू यानी अच्छा और फेमोस यानी ध्वनि अर्थात अच्छी ध्वनि। तात्पर्य कि वह शब्द जो सुनने में अच्छा लगे। यूफेमिज्म के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ की व्यंजना सुश्राव्यता से ठीक ठीक हो जाती है। इस कोटि में वे शब्द आते हैं जो सुनने में उद्वेजक न हो बल्कि अच्छे लगे। भाषा विचार के संप्रेषण का माध्यम मात्र नहीं है, जब मनुष्य के संस्कार विश्वास और सुरुचि की अभिव्यक्ति का साधन भी है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य में इन तत्वों का विकास हुआ है, जिनकी अभिव्यक्ति जीवन के समग्र दृष्टिकोण देश काल आदि के अनुसार होती है। हम जब जो चाहें नहीं बोल सकते, अवसर का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। भाषा में भी उसका प्रतिफलन देखा जाता है। काव्य शास्त्र में दोषों के प्रसंग में एक दोष आया है जिसे अश्लीलत्व कहते हैं। अश्लीलत्व के तीन रूप हैं, क वृणा, ख जुगुप्सा और ग अमंगल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के हृदय में लज्जा उत्पन्न करती हैं, कुछ घृणा और कुछ अमंगल की भावना, अतः उन्हें देखने या सुनने में मनुष्य को संकोच होता है। इसीलिए जब वैसी वस्तुओं का अभिव्यक्त करने का अवसर आता है तो उन्हें सीधे न कहकर प्रकारांतर से कहा जाता है। क वृणा, वृणावाचक शब्दों में यौन भावना, मलत्याग आदि सूचक शब्द आते हैं। उन कार्यों का सीधे नाम न लेकर अन्य वस्तुवाची शब्दों की सहायता से उल्लेख किया जाता है, जैसे मल त्याग के लिए जाने को पखाना, पैर रखने की जगह जाना, मैदान जाना, शौच यानी पवित्रता, दिशा फिरना, दिशाओं में घूमना आदि से व्यक्त करते हैं। आधुनिक युग में बाथरूम शब्द का प्रयोग केवल स्नानागार के लिए ही नहीं शौचगार के लिए भी होने लगा है। साहब बाथरूम में है का अर्थ स्नान कर रहे हैं न होकर शौचार्थ गए हैं यह होता है। यूं साहब कहलाने वाले लोग स्नान के बहुत आग्रही होते भी नहीं। मुंह आना, आँख आना आदि मुहावरे सुश्राव्यता के ही परिणाम है। भोजन के लिए भगोसना, लीला या गटकना आदि शब्द सुरुचिपूर्ण नहीं माने जाते। ख जुगुप्सा, वृणा या लज्जा व्यंजक शब्दों की तरह जुगुप्सा व्यंजक शब्द भी सुरुचि विरुद्ध हैं। जुगुप्सा का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है छिपाने की इच्छा, किंतु उसका प्रयोग घृणा के लिए होता है। घृणास्पद वस्तुएं देखने या सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए समाज में वे वर्ज्य मानी जाती हैं। उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, वह पीप से लथपथ पड़ा था, उसके इर्द गिर्द कीड़े बिलबिला रहे थे, उसके देह से दुर्गंध निकल रही थी आदि वाक्य घृणा उभारने वाले हैं। इसलिए मेरी भाषा का प्रयोग शिष्ट रुचि के प्रतिकूल माना जाता है। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग शिष्ट अभिरुचि के प्रतिकूल माना जाता है। ग अमंगल, अमंगलवादी शब्दों में मृत्यु और व्याधि के वाचक शब्द सबसे अधिक हैं। मनुष्य के लिए मृत्यु से बढ़कर कोई कष्टकर कल्पना नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा तक से वह बचना चाहता है। यही कारण है कि मृत्यु को कथाशेष, स्मृतिशेष, पंचतत्व प्राप्ति, स्वर्गवास, वैकुंठ लाभ, लोकांतर गमन जैसे सुश्रव्य शब्दों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इसी तरह वैधव्य के लिए चूड़ी फूटना, सुहाग लूटना आदि का प्रयोग होता है। घ अंधविश्वास, अंधविश्वास के कारण भी भाषा में बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो सुश्रव्यता की कोटि में रखे जा सकते हैं। चेचक को चेचक न कहकर शीतला देवी या माता कहना इस धारणा का परिणाम है कि ऐसा कहने से वह बीमारी क्रुद्ध नहीं होगी। सामान्य धारणा है कि प्रातःकाल कंजूस का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए लोग कंजूस का नाम लेने से परहेज करते हैं। हालांकि कंजूसी का निर्णय करना बड़ा कठिन है। वस्तुतः कोई भी अपने को कंजूस नहीं समझता, अपनी नज़र में वह महादानी होता है, और अब तक ऐसा कोई मानदंड नहीं निकला जिस पर कंजूस का सही सही निर्धारण हो जाए। पर ऐसा लोग विश्वास है और उसका पालन करना पड़ता है। मनुस्मृति में तो एक श्लोक ही है जिसमें कहा गया है, कल्याण चाहने वालों को अपना गुरु का, अतिक्रपण का, ज्येष्ठ संतान का और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात ज्येष्ठा पत्यकल त्रयो। इस श्लोक में केवल अंधविश्वास ही नहीं विनम्रता और आदर भाव भी है। कंजूस का नाम न लेने में अंधविश्वास से अधिक उद्वेजकता का भाव है। तो सामाजिक दृष्टि से लोग हितकारी नहीं माने जाते वैसे लोगों का नाम मन में उद्वेग या अरुचि उत्पन्न करता है और कंजूस लोग हित की तुला पर खरा नहीं उतरता। पांचवा व्यंग। इस प्रसंग में व्यंग शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के आयरनी का पर्याय है जिसका अर्थ होता है किसी पर आक्षेप करना। यह प्रसिद्ध व्यंग्यार्थ से भिन्न वस्तु है। इसके लिए हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में विपरीत लक्षणा शब्द का प्रयोग हुआ है। चूंकि आयरनी के लिए आजकल व्यंग शब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए यहाँ उसी का उल्लेख किया गया है। उद्धोतुमति चतुर सुजान में गोपियों ने चतुर और सुजान शब्द का प्रयोग विपरीत अर्थ में किया है, अर्थात तुम महा अज्ञ और बुद्धिहीन हो जो हम जैसी अबलाओं के सामने योग और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो। करानंद की निम्नलिखित पंक्ति में भी सुजान शब्द को लेकर व्यंग ही है। जानन अनेक विथा पर की बलिहार ताऊ पर सुजान कहावत, अर्थात नाम तो तुम्हारा सुजान है पर दूसरे की व्यथा जरा भी नहीं समझते। सुजान नाम की सार्थकता तो तब होती जब व्यथा समझते। आँख कांदा नाम नयन सुख चले न जाने आंगन टेढ़ा आदि कहावते भी व्यंग मूलक ही है। नाटकत के आदमी को देखकर एक वित्ते का आदमी कहना किसी की बुद्धिहीनता पर तुम तो साक्षात बृहस्पति हो या बुद्धिमान हो तो तुम्हारे जैसा आदि वाक्य व्यंग करने के उद्देश्य से ही बोले जाते हैं। अन्यायी को धर्मराज कंजूस को कर्ण कुरूप को कामदेव आदताई को कृपा निधान आदि कहना व्यंग की भावना से ही प्रेरित हो रहता है। लड़के के देर करके लौटने पर जब विवाह कहता है कि क्यों हजरत सुबह सवेरे लौट आए इसी तरह पढ़ते चलिए, इसका उद्देश्य लड़के के विलंब से आने का अभिनंदन करना नहीं होता। छठा भावात्मक बल। हमने देखा है कि बौद्धिक उपयोग के साथ भाषा का भावात्मक उपयोग भी होता है। भावात्मक बल के कारण अनेक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन पाया जाता है। बंगाल में एक मिठाई का नाम है प्राणहारा, प्राण लेने वाला। मिठाई का नाम प्राणहारा निश्चय हेतु उपयुक्त नहीं है लेकिन यह नाम रखने वाले का लक्ष्य था उस मिठाई की आस्वाद्यता का अतिशय बताना। उसकी बात सुनकर कलेजा मुँह को आने लगा। वे भावात्मकता का ही अतिरिक्त है, राम राम उसने कैसे यह काम किया। इस वाक्य में राम राम धिक्कारवाचक है। बंगला में भीषण सुंदर खूब चलता है, यहाँ भीषण भीषणता का वाचक नहीं अतिशय का वाचक है। इस तरह भयंकर चतुर प्रचंड मूर्ख भावावतिरेक के ही परिणाम है। अंग्रेजी में ऑफली बिजी पेशेंटली डिवोटेड टू ड्यूटी आदि प्रयोग उपर्युक्त प्रवृत्ति से ही प्रेरित है। सातवां सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। कभी कभी पूरे वर्ग के लिए उसी वर्ग की एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तुतः अर्थ विस्तार का ही एक रूप है। जैसे सब्जी शब्द का प्रयोग केवल सब्जी यानी हरी तरकारियों के लिए ही होना चाहिए किंतु उससे सभी तरकारियों का बोध होता है। आलू टमाटर कोहड़ा कद्दू आदि तरकारियां सब्ज नहीं है फिर भी सब्जी कहलाती हैं। स्याही शब्द स्याह यानी काला से बना है पर उसका प्रयोग केवल काली रोशनाई के लिए नहीं होता। किसी भी रंग की रोशनाई स्याही कहलाती है जैसे लाल स्याही हरी स्याही बैगनी स्याही आदि। वह बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ पैसे शब्द का प्रयोग संपत्ति या धन के लिए हुआ है। पैसे वाले का अर्थ यह नहीं होता कि किसी के पास केवल तांबे के पैसे हैं। अनेक पशु या पक्षियों के नाम में एक ही शब्द नर या मादा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है जैसे कोयल कौवा उल्लू मेढक सुअर गीदड़ आदि। स्त्रीलिंग लोमड़ी शब्द से ही उसके नर का भी बोध कराया जाता है। इस तरह यहाँ भी सामान्य से विशेष से सामान्य के अर्थ बोध की प्रवृत्ति है। बहुत मजदूर काम करते हैं, इस वाक्य में मजदूर शब्द में मजदूरों का भी बोध होता है। छात्र अध्यापक आदि शब्दों में छात्राओं अध्यापिकाओं का ही अर्थ वर्तमान रहता है। जलपान कर लीजिए कहने का अर्थ यह नहीं होता कि केवल पानी पी लीजिए, वह सामान्यतः लघु भोजन वाचक है। आठवां अज्ञान अथवा भ्रांति। कहा जा चुका है कि असुर शब्द पहले देववाचक था किंतु बाद में अनिषेध का अंश मान लिया गया और सुर शब्द का प्रयोग देव के लिए होने लगा। फिर सुर में अ लगाकर असुर से दानों का बोध कराया जाने लगा। क्रोध के लिए रंज शब्द का प्रयोग अज्ञान का ही परिणाम है। निखालिश में नी की कोई आवश्यकता नहीं है, खालिश ही अर्थबोध के लिए पर्याप्त है। नेवर पड़ोसी के लिए लेबरर मजदूर शब्द के प्रयोग का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। एक संपन्न व्यक्ति ने जो कब्ज से परेशान थे सिविल सर्जन को बुलाया और पत्र में लिखा कि माई लैट्रिन इज नॉट क्लीन। उन्हें लैट्रिन का अर्थ नहीं मालूम था, यह स्पष्ट है। लैट्रिन की सफाई के लिए महतर को बुलाने की जरूरत होती है, सिविल सर्जन को नहीं। मैथिली में कुशल शब्द कुशली के लिए प्रयुक्त होता है। एक अध्यापक जो उर्दू नहीं जानते और फिर भी उर्दू जानने का दम्भ करते हैं, एक बार एक बुजुर्ग से बोले, आपके जैसा जवान दराज मिलना मुश्किल है। यह वाक्य सुनकर उस बुजुर्ग को बड़ा क्षोभ हुआ। हालांकि अध्यापक महोदय ने अपने जानते उनकी तारीफ की थी। जवान दराज का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर अनुचित बातें करने वाला, किंतु अध्यापक महोदय ने वाग्मिता के लिए उसका प्रयोग किया था। इस तरह के भ्रांत प्रयोग बहुत देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने जैसे तैसे भाषा का काम चलाओ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपनी अहम मान्यता के कारण अपने को भाषा का ज्ञाता मान लेते हैं, वे अधिकतर इस तरह के भूले करते हैं। नवा शब्दार्थ के अंतर्निहित अनिश्चितता। किसी भी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सुनिश्चित नहीं होते। अमूर्त भावों के वाचक शब्द प्रायः इस कोटि में आते हैं। गुलाब या अनार क्यों संकेत कर जितनी आसानी से इन शब्दों का अर्थ बताया जा सकता है, उतनी आसानी से न्याय, घृणा, दया, प्रेम, ईश्वर आदि शब्दों का नहीं। इन अर्थों के अर्थ में सहज अस्पष्टता है जो निश्चित अर्थबोध में बाधक होती है। अनुकंपा, कृपा, दया का भेद करना बहुत कठिन है। इसी तरह अभ्युदय, उन्नति, विकास, प्रगति आदि शब्द भी अर्थ की दृष्टि से बहुत स्पष्ट नहीं है। क्षोभ, आक्रोश, रोष की सीमा रेखा खींचना दुष्कर है। इसीलिए देखा जाता है कि जहाँ किसी दूसरे शब्द का प्रयोग अधिक संगत होता वहाँ प्रयोक्ता दूसरे शब्द का प्रयोग कर देता है। दसवां, व्यक्ति के अनुसार शब्दों के प्रत्यय कंसेप्ट में भेद। व्यक्तिगत संस्कार, परिवेश, शिक्षा, जीवन प्रणाली आदि के भेद से शब्दों का जो प्रत्यय मन में उत्पन्न होता है वह अभिभिन्न होता है। अर्थ, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, खाद्य, खाद ही कोई एक कसौटी नहीं है। धर्म शब्द हिंदू, मुसलमान और ईसाई के हृदय में विभिन्न भावनाएं उत्पन्न करता है। अधर्म आदि की भी यही स्थिति है। हिंदू गोमांस नहीं छू सकता तो मुसलमान सुअर का मांस। जैन की दृष्टि में किसी प्रकार की हिंसा पाप है, पर कई ऐसे धर्म जो हिंसा को पाप मानते ही नहीं। लोकतंत्र या जनतंत्र शब्द का वही अर्थ अमेरिका में नहीं होता जो रूस में। जैसा एक लेखक ने लिखा है, अमेरिका में लोकतंत्र का अर्थ है लोक द्वारा शासन और रूस में लोक का शासन। पिछले युद्ध के समय जर्मनी और इंग्लैंड दोनों लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। निश्चय ही दोनों को लोकतंत्र शब्द का एक ही अर्थ अभिमत नहीं था। अगर एक ही अर्थ अभिमत होता तो लड़ने की आवश्यकता क्या थी। बनारस में हिंदी के प्रेमी के मुंह से सभा शब्द का प्रयोग काशी नागरी प्रचारणी सभा का वाचक होता है तो मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। तात्पर्य यह कि विभिन्न व्यक्तियों के मन में एक ही शब्द से विभिन्न प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। स्वभावतः प्रयोग के समय भी प्रत्यय शब्द के चयन में सहायक बनते हैं। ग्यारहवां, शब्दार्थ के एक तत्व की प्रमुखता। कभी कभी शब्द के पूरे अर्थ को ध्यान में रखकर उसके किसी एक तत्व को ही प्रधानता देकर प्रयोग चल पड़ता है। जैसे पुलिस के लिए लाल पगड़ी शब्द का प्रयोग। पुलिस केवल लाल पगड़ी ही नहीं पहनती, पर लाल पगड़ी का प्रयोग पुलिस के लिए प्रसिद्ध हो गया है। लाल पगड़ी को देखते ही सब लोग 9-11 हो गए। यह वाक्य सुनने पर अर्थ में कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुलिस के आते ही सब लोग तितर बितर हो गए। इसी तरह गांधी टोपी कांग्रेसी का वाचक हो गया है। कर सुनो बिन मुंदरी में अंगांगी विवाह संबंध में कर अंगुली के लिए प्रयुक्त हुआ है। लाल कुर्ती कहने से खान अब्दुल गफार खान द्वारा संगठित खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की प्रतीति रहती रही है। इसका स्वाधीनता के पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में पर्याप्त महत्व था। एक तत्व की प्रधानता के कारण ही कोई शब्द उस वस्तु या वर्ग का वाचक बन जाता है। जैसे सोने का नाम स्वर्ण केवल वर्ण के आधार पर ही पड़ा है, यद्यपि सुवर्ण में केवल वर्ण ही नहीं होता। संस्कृत में स्त्री का एक पर्यायवाचक भी है जो स्त्री की नैसर्गिक वक्रता पर आधारित है। यद्यपि न तो प्रत्येक स्त्री वामा होती है और न एक ही स्त्री सदा वामा रहती है। बारहवां, साचर के कारण गौण अर्थ की प्रमुखता। विदेश में जब पहले पहल तंबाकू इस देश में आया तो सूरत बंदरगाह पर उतरा और वहीं से देश में इसका प्रसार हुआ। सूरत के साचर के कारण तंबाकू का नाम सुरती पड़ गया। कश्मीर में केसर की उत्पत्ति के कारण केसर का नाम संस्कृत में काश्मीर भी है। कंबोज में उड़द का संबंध रहने से उड़द का एक नाम काम्बोजी पड़ गया है। शक्कर को चीनी, नमक को सैंधव साचर के आधार पर ही कहते हैं क्योंकि उनका संबंध चीन और सिंधु से रहा है। फ्रांसीसी में ब्रांडी को कोन्याक कहते हैं क्योंकि कोन्याक नामक स्थान में वह बनाई जाती है। छोटे जहाज को स्टीमर स्टीम वास्प के साचर के कारण ही कहा जाता है। 13, एक शब्द के विभिन्न रूपों का विभिन्न अर्थों में प्रयोग। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी शब्द के तत्सम और तद्भव तद्भव रूपों में अर्थ की दृष्टि से भेद हो जाता है। जैसा खाद्य खाद, भद्र भद्दा, श्रेष्ठ सेठ, क्षीर खीर, स्तनदूत, वधु बहु आदि शब्दों से स्पष्ट है। एक ही शब्द के अनेक तद्भव रूपों में भी अर्थभेद की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ पत्र शब्द से पत्ता, पत्ती, पाती, पत्तर, पत्तल आदि अनेक शब्द विकसित हुए हैं किंतु इनके अर्थ में भेद है। पत्र शब्द के दो अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी। उपर्युक्त तद्भव रूपों में चिट्ठी का अर्थ केवल पाती शब्द से ही निकलता है। अर्थ परिवर्तन के अनेक व्याकरणिक कारण भी हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग आदि, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। काला, काली, दुर्गा के अर्थ में अंतर लिंग भेद के कारण ही है। व्याकरणिक कारणों में अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से समास का बहुत बड़ा महत्व है। राज्य वैद्य वैद्यराज, राजकवि कविराज, गृहपति पतिगृह आदि शब्दों में अर्थ का अंतर समास के कारण ही है। राज्य वैद्य का अर्थ होता है राजा का वैद्य, किंतु वैद्यराज का वैद्यों में श्रेष्ठ। गृहपति अर्थात घर का मालिक और पतिगृह अर्थात पति का घर। इनमें शब्द समान ही है किंतु समास के भेद के कारण अर्थ भेद हो गया है। बद्ध मुष्टि शब्द कर्मधार है, बधी मुष्टि के लिए एक अर्थ देता है तो बहुव्रीह बधी है मुष्टि जिसकी के द्वारा दूसरा अर्थ। उपर्युक्त संक्षिप्त चर्चा से स्पष्ट है कि अर्थ परिवर्तन का कोई एक तथा सुनिश्चित कारण नहीं है। अर्थ परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य, मानसिक और भौतिक अनेक कारण सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं जिसकी परिणति अर्थ विकास में पाई जाती है।